हरे कृष्णा। तो आज के 8 अक्टूबर के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है इस बात की, और सबके लिए बहुत धन्यवाद जिन्होंने कीर्तन में भाग लिया। हरे कृष्णा। तो अभी चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में 3रा महीना चल रहा है और अभी 4था महीना आरंभ होने जा रहा है। ये भगवान का हमारे लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट है। ऐसे सोचते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, कि हजारों मनुष्य में थोड़े से जीव भगवान को चाहते हैं और भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं। और ऐसे जो हजारों जीव होते हैं उनमें से एक भगवान को समझता है कि भगवान क्या वस्तु है, और ऐसे भगवान को समझने वाले कुछ लोगों में से एक व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगता है, और ऐसे प्रेम करने वाले में से एक व्यक्ति भगवान के पास पहुंचता है। तो भगवान कहते हैं बहुत दुर्लभ वस्तु है ये, मेरे धाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और बहुत दुर्लभ भी है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप उन हजारों में से एक हो तो भगवान आप पर बड़ी कृपा करते हैं, तो आप उनमें से एक हो जो उनके पास जाना चाहते हैं, इसलिए वो आपको उनके पास जाने के लिए मदद करते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग चाहते हैं कि उनके पास पहुंचे, बाकी सब लोग दुनिया में यहाँ पर मौज मस्ती करना चाहते हैं, और ऐसे हजारों लोगों में से एक व्यक्ति आना चाहता है उनके पास, और उस व्यक्ति को उनके पास आने में बहुत सुविधा मिले, इसलिए भगवान हर तरह की व्यवस्था करते रहते हैं। जैसे कि चतुर्मास, इन 4 मास में जो भगवान का भजन करेगा उसको बाकी मास में से भी अधिक गुना लाभ देंगे उसका। बाकी महीने में कुछ करेंगे तो उसका एक लाभ होगा, चतुर्मास में करेंगे तो और लाभ होगा। फिर हर महीने में 2 बार एकादशी भेजते हैं, एकादशी मतलब कई गुना आपको लाभ मिलेगा अगर उस दिन आप भगवान का नाम लेंगे तो। कीर्तन करेंगे, नाम लेंगे, कथा सुनेंगे भगवान की, दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो उस दिन आपको बाकी दिन करने से और ज़्यादा लाभ होगा। और वो 4 महीने जो है, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, है ना, ऐसा है ना कुछ, तो ये 4 जो महीने हैं, इसमें 4था महीना जो अभी आने वाला है वो कहते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल महीना है, क्योंकि उसका नाम है दामोदर मास। और ये दामोदर मास जो है ये राधिका, राधा रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, और ये मास में जो भी भगवान का भजन करता है, राधा रानी स्वयं जो भक्ति देवी है, स्वयं भक्ति की जननी है, वो स्वयं उसको कृपा करके अपने पास लेके आती है। इसलिए ये मास जो है जैसे भगवान का एक ग्रैंड सेल है हमारे लिए, मतलब साल में होता ना सेल, एक दुकान साफ कर रहे हैं और सब माल 10% मिल जाएगा, जो आता है वो लेके जाओ, एक पैंट लेके 4 पैंट फ्री। सब लोग उस समय पहुंचते हैं, दिवाली में, नवरात्रि में, क्रिसमस में, सब जगह पहुंच जाते हैं ताकि सब माल सस्ता मिलता है। जो माल साल भर में इतना कीमत में मिलता है वो उस महीने में बहुत सस्ता मिल जाता है, सब लोग पहुंच जाते हैं वहां पर खरीद करने के लिए। उस तरह से मंडी मार्केट यहाँ पर है, हफ्ते भर में सब्जी मिलती है लेकिन मंडी मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है, तो बहुत सारी और भी कीमती वस्तु मिलती है, सस्ती सस्ती मिल जाती है। तो वैसे जितना समय भगवान ने हमको दिया है 12 महीने का एक साल में, उसमें एक महीना भगवान ने ऐसा रखा है कि जो भी व्यक्ति इस महीने में कुछ भी करेगा उसको बहुत गुना लाभ होगा, हजारों गुना लाभ होगा। इसलिए अभी कार्तिक महीना शुरू होने वाला है तो उसके पहले हम आपको बताने वाले हैं, उसका बहुत सारा वर्णन है लेकिन संक्षेप में बताएंगे आपको कि क्या क्या आप कर सकते हो जो करने से एक महीने में आपको बहुत लाभ होगा। एक तो ये राधा रानी का प्रिय मास है, और जो भी व्यक्ति भगवान की इस महीने में सेवा करता है राधा रानी उसको बहुत प्रेम करती है, और राधा रानी कौन है, भक्ति को देने वाली है। जिस व्यक्ति पर वो कृपा करती है उसको भक्ति देती है, और भक्ति देने का मतलब क्या है, भगवान को उसका बना देती है, भगवान को भेंट देती है। जो भगवान बहुत दुर्लभ है, वो योगियों को तपस्वियों को किसी को मिलते नहीं, वो बहुत दुर्लभ है, वो भगवान राजा रानी की दया से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ये उसकी कृपा का मतलब है। उसकी कृपा का मतलब क्या है, उसकी कृपा का मतलब है कि भगवान हमारे हो जाते हैं। तो ये महीने में क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये महीने में भगवान को हम दीपक जलाते हैं। वैसे कहा गया है कि इस महीने में जो भगवान को दीपक अर्पण करता है अपने घर में तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अच्छे अमीर खासे हो तो आप घी का दीपक बना सकते हो, अगर आप नहीं अमीर हो तो तेल का भी लगा सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भगवान सोचते नहीं, क्या है तुम गरीब हो, क्या है तुम्हारे पास घी भी नहीं है, मैं तुम्हारा दीपक नहीं स्वीकार करूँगा, ऐसे भगवान नहीं बोलते। भगवान वो दीपक के माध्यम से आपका प्रेम स्वीकार करते, आपकी जो भी क्षमता है वो क्षमता से आपको एक दीपक भगवान को अर्पण करना है हर रोज़। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण के जितने रूप हैं, नरसिंह है, वामन है, राम है, कृष्ण है, बलराम है, इनमें से किसी भी रूप को आप भगवान का दीपक जो है वो अर्पण कर सकते हैं। एक कार्तिक में अर्पण किए हुए दीपक के सामने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या बताया मिस पटेल मैंने, हरे कृष्णा, उनको पूछो, तुम्हारे बाजू वाले को, आपके साइड वाले, हाँ आपको पूछ रहा हूँ, क्या बोला मैंने अभी दीपक के बारे में, नहीं सुना मैंने, सुना बताया कि कार्तिक महीने में एक दीपक भगवान को अर्पण करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, एक दीपक अर्पण करने से, बहुत सस्ता मामला है। उसके लिए कोई ताप पाप तपस्या नदी में स्नान बहुत सारा व्रत करने की जरूरत नहीं, कार्तिक महीने के अंदर एक दीपक आप अर्पण करेंगे भगवान को तो जितने पापों का दुख हम भोग रहे हैं वो सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। और इसलिए हमारे मंदिरों में क्या करते हैं, हर रोज सुबह और शाम वो इस महीने का एक विशेष गीत है उसको हम गाते हैं, उसको कहते हैं दामोदर अष्टकम, बहुत सुंदर भजन है ये जो सत्यव्रत मुनि ने लिखा हुआ है, और उसमें भगवान दामोदर जो बाल कृष्ण हैं, जो माखन चुराने वाले हैं, उन बाल कृष्ण के गौरव करते हैं इसके अंदर, और वो गीत जब गाते हैं उसका अर्थ बताते हैं, वर्णन करते हैं, उस समय भगवान को दीपक अर्पण करते हैं सुबह और शाम। अगर आपको तकलीफ़ है घर में बनाने के लिए, भूल गए बनाए नहीं, तो आप मंदिर में जा सकते हैं सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे, और आपको वो दीप करने को फ्री में मिलेगा। अगर आपके पास घी नहीं है तो आपको घी का दीपक वहाँ पर फ्री में मिलेगा। और भक्ति वेदांत में आपको दोपहर को 2:30 बजे और शाम को 5 बजे आपको दीपक बना बनाया मिलेगा। आपको जगन्नाथ मंदिर में आना है और भगवान को दीपक अर्पण करना है। ये सब क्यों करते हैं भक्त लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान के पास जाने के लिए बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट है, तो भगवान का नाम बढ़ रहा है तो बहुत कम लोग उसको लेते हैं। अरे इसमें क्या है, टाइम पास है पूरा, कुछ मज़ा तो नहीं है इसके अंदर, ऐसा लगता है। लेकिन जो भगवान का नाम लेते हैं वो बड़ी खुशी से जीवन को मनाते हैं, उनके जीवन में खुशी आ जाती है, तो बड़ी आसानी से भगवान की कृपा उनको मिलनी चाहिए। इसलिए भक्त लोग ऐसे दीपक की व्यवस्था करते हैं, कोई चार्ज लेते नहीं उसको, कोई दान देता है, बोलता है मेरे नाम से 1000 दीपक बनाओ, लोगों को अर्पण करने दो। क्योंकि हम लोग भगवान का नाम पे हमको रुचि क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत पाप भरे हुए हैं। जब स्कंधे में पाप भरे हुए हैं आत्मा के ऊपर, तो उसके मुँह से भगवान का नाम नहीं निकलता है जब तक उसका पाप खत्म नहीं होता है। और दीपक करने से क्या होता है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही पाप नष्ट हो जाते हैं तुरंत उसका भाग्य उदय होता है और तुरंत भगवान का नाम लेने लगता है। जो भगवान का नाम लेने में उसके अंदर बाधा थी वो नष्ट हो जाती है और तुरंत वो भगवान का नाम लेने के लिए उत्साह आता है उसके अंदर। इसलिए ये दीपक का आयोजन किया गया है और बार बार हम लोग अनाउंस करते हैं कर्मचारियों के लिए, सुबह शाम रात को आइए मंदिर में आइए, दीपक अर्पण कीजिए भगवान के लिए, आपके लिए फ्री में व्यवस्था किया है, आप शाम को आइए और दीपक अर्पण कीजिए, क्योंकि लोग नहीं आते उसके अंदर। दुर्भाग्य से को कहते हैं, जब भगवान बड़ी आसानी से आप पर कृपा करने को तैयार हैं फिर भी हम जाते नहीं उधर, क्योंकि हमारा श्रद्धा नहीं है, ना हमको इंटरेस्ट है ना श्रद्धा है। लेकिन कार्तिक महीने में अगर गलती से भी आप पहुंच गए उधर और आपने दीपक अर्पण कर दिया, आपके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। और वही कर्म जो हमारे लिए बार बार इस दुनिया में आने में मजबूर करते हैं, हमको यहाँ पर तकलीफ देते हैं, कष्ट भोगने को मजबूर कर देते हैं, वो सारे कर्म जो है बड़ी आसानी से खत्म हो जाते हैं। तो दीपक दान का इस महीने में बहुत बड़ा महत्व है। गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, चांदी के दीपक में अर्पण करता हो, सोने के दीपक में करता हो या मिट्टी वाले में करता हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ना चांदी को भगवान देख रहे हैं, ना मिट्टी को देख रहे हैं, ना सोने को देख रहे हैं, भगवान तो उस दीपक के माध्यम से जो आप प्रेम अर्पण कर रहे हैं, भक्ति अर्पण कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और उसी को देखना चाहिए हमेशा। भगवान जानते हैं कलयुग के जीव और क्या अर्पण कर सकते हैं। सोना भी मेरे ही पृथ्वी से आया हुआ है, चांदी भी मेरे ही जमीन से आया हुआ है, लेकिन भक्ति जो है वो इस व्यक्ति का अपना है, उसको स्वीकार करते हो। और इस महीने में अगर आप जप करते हो तो आपको बाकी महीने से कई गुना लाभ मिलेगा। मैंने सुना है कि 100,000 गुना लाभ मिलता है उसका इस महीने में करने से। बाकी महीने में 1 माला करेंगे तो आपको 1 माला का लाभ मिलेगा, कार्तिक महीने में करेंगे तो 100,000 माला करने का लाभ मिलेगा। मतलब बहुत सारा लाभ मिलेगा, बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप, कम समय में अधिक लाभ ले सकते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप 8 घंटा काम करो, आपको महीना भर का पगार मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे कौन 8 घंटा काम करेगा, इतना 8 घंटा तो कितना तकलीफ होता है। लेकिन आपको बोला जाएगा कि 8 घंटे में आपको करेंगे तो 1 महीने का तनख्वाह मिलेगी, तुरंत भागेंगे आप वहाँ पर, बीमारों के भागेंगे। चलो भाई 8 घंटे के अंदर पूरा महीने का पगार मिलता तो क्या है, बाकी 29 दिन छुट्टी मारेंगे, 1 दिन काम करेंगे, पूरा पगार लेके जाएंगे। ये हिसाब सबको समझता है। लेकिन हम बताएंगे आपको कि कार्तिक महीने में 1 माला करेंगे तो 100,000 माला करने का लाभ होता है, तो ये सब इसको समझ में नहीं आता है, यही दुर्भाग्य है। और कार्तिक महीने में लोग व्रत करते हैं, जो जो हमको बहुत प्रिय है उसको छोड़ देते हैं, कोई मिठाई छोड़ देता है, उसको प्रिय वस्तु है भगवान के लिए छोड़ देता है, ये महीने के लिए मैं नहीं खाऊंगा, तला हुआ वो चीज़ नहीं खाऊंगा, मिठाई नहीं खाऊंगा, आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, बच्चे लोग कहते हैं चॉकलेट नहीं खाएंगे, भगवान के लिए अर्पण करते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप ये सब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन छोड़ने की वजह से कुछ पकड़ना चाहिए ये महीने में, क्या पकड़ सकते हैं बताओ एक्स्ट्रा? हाँ, एक्स्ट्रा जप कर सकते हैं। अगर आप 2 घंटा कर रहे हैं रोज, तो आप बोले मैं 2.5 घंटा करूँगा, 1/2 घंटा ही महीने में एक्स्ट्रा करूँगा, या 1 माला एक्स्ट्रा करूँगा, मेरा नियम जो है उससे 1 माला में एक्स्ट्रा करूँगा, 1 महीने में रोज करूँगा 30 दिन तक, ये सही व्रत है। करने की चीज़ है ना वो सच्चा व्रत है, ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा वो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर नहीं कुछ करना है तो एक चीज़ ज़रूर आपको नहीं करना चाहिए इस महीने में, वो किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। आप जरूर इस व्रत को ले सकते हैं कि 1 महीना कार्तिक के शुरू से लेकर एंड तक मैं किसी के बारे में बुरा बोलूँगा नहीं या बोलूँगी नहीं, किसी के बारे में टीका नहीं करूँगी, निंदा नहीं करूँगी। कहते हैं ये सबसे पावरफुल व्रत है, आइसक्रीम छोड़ने से भी बहुत पावरफुल व्रत है, क्योंकि ये मुख जो है ना ये स्तुति कम करता है, निंदा ज़्यादा करता है। अब बुरा को बोलने का समय आता है, सब लोग जोर जोर से बोलते हैं बुरा, अच्छा बोलने का समय आ गया तो जबान निकलती नहीं है, किसी ने अच्छा किया तो उसकी तारीफ होती नहीं हमसे, कितना कष्ट का काम है। किसी का अच्छा बोलने को होता ही नहीं है, और बुरा बोलने को बोलो रुकने का टाइम नहीं है, बिना रुके बोले जा रहे हैं, बोला बस करो अभी 2 घंटा हो गया, 2 घंटे का आपका व्रत पूरा हो गया, बुराई करने का अभी शांति रखो, फिर भी चलते हैं, फिर भी चलता है। ये हमारा स्वभाव है कलयुग के लोगों का, इसलिए हमको कलयुग के अंदर अगर कुछ प्रगति करनी है तो भगवान के भजन के सिवा प्रगति नहीं कर सकते। बुराइयों को नष्ट करना है, भगवान के भजन के बिना नहीं कर सकते। और कार्तिक का महीना इसके लिए सबसे अच्छा मौका है, बड़ी आसानी से आप अपने अंदर की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो 1 महीना किसी की निंदा नहीं करेगा प्रयत्न करके, उसको 1 महीने के बाद दूसरा महीना आएगा ना तो उसकी आदत लग जाएगी, वापस भी नहीं करेगा वो, क्योंकि 30 दिन उसने आदत छोड़ दिया उसका, तो 31 दिन उसको याद नहीं आएगा, उसको बड़ा अच्छी आदत लगाई नहीं बोलने की, बुरा ऐसा है। और सबसे महत्वपूर्ण लोग बात करते हैं इस महीने में, वो धाम की यात्रा करते हैं। सब लोग वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, धाम में निवास करते हैं, वहाँ पर भगवान की सेवा करते हैं, वहाँ पर व्रत लेते हैं, अधिक जप करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, प्रसाद दान करते हैं लोगों को, या दीप दान करते हैं, या और कुछ दान करना है उनको मंदिर के लिए या किसी ज़मीन के लिए कुछ के लिए करना है तो उस महीने में कर देते हैं। ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आत्मा के लिए लाभ है। और मैं आपको विनती करता हूँ कि मनुष्य का जीवन जो है ना वो इसके लिए है, और देवताओं का जीवन भी मनुष्यों से नीचा माना गया है, क्योंकि देवताओं के जीवन में भी भगवान की भक्ति हम लोग उतनी अच्छी नहीं कर सकते हैं जितनी मनुष्य के जीवन में कर सकते हैं। क्यों ऐसा? आप बोलेंगे देवता तो इतने सुंदर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनके हाथ में क्या क्या कंट्रोल होता है, हवा पानी सब कुछ उनको देते हैं वो। तो आप बोले देवता का जीवन हमसे कम है, ऐसा कैसा है? क्योंकि देवता के जीवन में बहुत सारा ऐश्वर्य है, बहुत सारा भोग लेने की व्यवस्था है, और जब आदमी बहुत भोग लेता है ना तो भगवान को भूल जाता है। मैं खाना पीना इज्जत घूमने इधर उधर, आप बिजी हो तो भगवान का आपको याद नहीं आएगा, कि बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, पत्नी मर गई, बच्चा मर गया, तुरंत भगवान की याद आएगी। तो इस जीवन में देवताओं से अधिक कष्ट है, इसलिए भगवान की याद ज़्यादा आती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुख है तो भगवान की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए देवताओं का जीवन मनुष्य के जीवन से भी नीचा माना गया है। भक्त लोग जो होते हैं ना, जो भजन करते भगवान का, वो कभी भगवान को ऐसा नहीं बोलते मुझे देवता बना दो, मुझे स्वर्ग लोग भेज दो, मुझे वहाँ जाना है। वो बोलते मुझे देवता का जन्म नहीं चाहिए, अगले जन्म में मैं देवता नहीं बनना चाहता, अगर बनना ही है तो आपके धाम में सेवा करना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ। लेकिन देवताओं के धाम में जाने का इच्छा नहीं करते हो, क्योंकि तो कई देवताएं इतने सारे भोग प्राप्त करने के बाद में भगवान को भूल जाते हैं। और एक खुशी की बात ऐसी, आपको ये मालूम भी होगी किसी लोगों को, लेकिन मालूम नहीं होगी तो बता देता हूँ, बात यह है कि देवता लोग बहुत सारे हजारों और लाखों साल जीते हैं, हम लोग कुछ 70-80 साल जीते हैं, लेकिन देवता लोग 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 कोटि ऐसे उनके अलग अलग लोगों के लाइफ है। कुछ लोग में 1,000, कुछ लोग में 10,000, कुछ लोग में 1,00,000, कुछ लोग में 10,00,000, कुछ लोग में 1 कोटि साल तक उनका जीवन होता है। और इतना लंबा जीवन के अंदर इतना भोग लेते हैं वो, इतना आनंद लेते हैं, खुशियाँ लेते हैं, कि भगवान की याद उनको बहुत मुश्किल से आती है। और कलयुग में कैसा भगवान ने व्यवस्था किया है, कलयुग में भगवान का नाम का सहारा लेके 70-80 साल के अंदर व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ये करोड़ों और करोड़ों देवता जो है, इनमें से जो बुद्धिमान देवता है, सब देवता इतने बुद्धिमान नहीं होते, कुछ कुछ देवता बहुत बुद्धिमान होते हैं, जैसे गणेश जी है, इंद्र है, चंद्र है, वायु है, वरुण है, हाँ बड़े बड़े मेन मेन देवता जो होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनको ज्ञान भी होता है भगवान का बहुत ज़्यादा। तो वो समझते हैं कि हमारा जीवन जो है बहुत लंबा और करोड़ों साल का है, लेकिन पृथ्वी पर अगर हम कलयुग में जन्म लेंगे मनुष्य के रूप में तो कुछ 70-80 साल के अंदर डिस्काउंट में भगवान के पास तुरंत पहुँच सकते हैं। यहाँ पर 1 करोड़ साल रहने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको भगवान के धाम में एंट्री मिलेगा, लेकिन कलयुग में खास करके अगर आप मनुष्य बनकर जन्म लेंगे तो बड़ी आसानी से भगवान के धाम पहुँच सकते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ है कि कलयुग में मनुष्य का जन्म प्राप्त करने के लिए देवता लोग लाइन में खड़े हैं कि वो वैष्णव के रूप घर में पुत्र या पुत्री बनकर आ जाए। कितनी बड़ी बात है, अभी हमको समझ में नहीं आती होगी ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, पागल लोग इतना आनंद छोड़ के पृथ्वी पर क्यों आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देवताओं को ज्ञान है, वो जानते हैं कि भगवान की भक्ति और भगवान का सेवा जो है उसको सबसे बड़ी प्राप्ति है, और वो कलयुग में बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती है, और देवता के रूप में उनको भगवान के धाम में भी यहाँ पर प्रवेश मिलता नहीं है। श्री वृंदावन धाम बताओ, जगन्नाथपुरी बताओ या मायापुर बताओ, वहाँ देवताओं को प्रवेश नहीं मिलता है, ऋषियों को प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन भगवान के भक्त जो है नाम लेते लेते प्रवेश कर लेते हैं। जब भगवान यहाँ पर आए थे ना द्वापर युग में, तो भगवान का प्रसाद मिल जाए इसलिए सब देवता लोग भाग भाग के आते हैं। उनके लोगों में 56 भोग रहते हैं खाने के लिए, लेकिन भगवान का महाप्रसाद खाने को नहीं मिलता है। तो जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो वो महाप्रसाद मिलेगा ऐसे अपेक्षा करते हो। तो ऐसे ही भगवान एक बार जमुना किनारे में खेल रहे थे, और जमुना किनारे खेलते हैं और जमुना जी में हाथ धोते, तो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा, मैं मछली बन जाऊँगा। तो जब भगवान हाथ धोएंगे तो कुछ तो हाथ को लगा हुआ गिरेगा ना पानी के अंदर, वो मैं खा लूँगा, वो महाप्रसाद से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। सबसे बड़े देवता है वो, इंद्र चंद्र से भी बड़े हैं, सबके परम पितामह हैं। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ी योजना से बड़ी आइडिया करके भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करूँगा। तो जमुना जी में मछली बन गए वो, तो भगवान ने भोजन किया अपने भक्तों के साथ में, फिर जमुना जी के पास गए हाथ धोने के लिए, तो देखा कि मछली घूम रही है, देख लिया ये ब्रह्मा जी हैं। तो जमुना जी से दोनों में पानी लिया और जमीन पे हाथ धोया। कहने का मतलब क्या है, जो ग्वाल वालों को मुमकिन है वो उसके मुंह से भी खींच के खा सकते हैं। भगवान जो खा रहे हैं उसको मुंह से छीन के भी खा सकते हैं, और भगवान भी उनके मुंह से जूठा छीन के खा सकते हैं, इतना प्रेम है उनके ऊपर। और वो भाग्य जो ग्वाल वालों को मुमकिन है ब्रह्मा जी को मुमकिन नहीं है। तो आज बताओ किसका जीवन श्रेष्ठ है। तो भगवान के कंधे पर भी उठकर नाचते हैं, भगवान को कंधे पर लेकर घूमते हैं, उनका गेंद खेलते हैं, लुका छुपी खेलते हैं, पेड़ से पेड़ पे कूदते हैं उनके साथ में, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ में मक्खन चुराते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं उनके साथ में। इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म लेना ये देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि तो ये जीवन में आपको लगता होगा आप लोग गरीब हो, क्या है आपके पास नॉलेज नहीं है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, कितना बेकार जीवन है हमारा, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन देवताओं के सामने भी आपका जीवन धन्य है, क्योंकि तो इस जीवन में आप भगवान का नाम पुकार सकते हो, भगवान का महाप्रसाद खा सकते हो, भगवान की पैरी में माला पहन सकते हो, वो देवताओं को मुमकिन नहीं है। एक बार इंद्र को, थोड़ा ध्यान सुनना आप मेरे क्या बोल रहा हूँ, एक बार इंद्र के लोक में दुर्वासा मुनि गए, और वो दुर्वासा मुनि वैकुंठ से आ रहे थे, तो उनको विष्णु जी का महाप्रसाद की माला जो है प्राप्त हुई थी। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो मैं वृंदावन में गया समझो, मुझे बहुत सारा प्रसाद मिल गया, तो सब मैं खुद नहीं खाता, थोड़ा खाता हूँ और सब यहाँ पर लेके आता हूँ और सबको बांटता हूँ कि सबको मिलना चाहिए, इतना सा क्यों ना हो, मॉर्निंग प्रेयर में बांट देते हैं उसको, ताकि एक एक कण क्यों ना हो, सबको मिलना चाहिए, भगवान का प्रसाद है वो, साधारण वस्तु नहीं है। तब ऐसे ही दुर्वासा मुनि को भगवान की माला मिली विष्णु की, तो वो स्वर्गलोक में आए, तो उन्होंने इंद्र को देखा, तुरंत माला निकाल के इंद्र को दे दी, भाई इंद्र को उसका लाभ मिलना चाहिए, उसको तो वैकुंठ में एंट्री नहीं मिलता है, मुझे मिली हुई है, प्रसाद भी मिला हुआ है, ले लो भाई। तभी इंद्र होते हुए भी वो अप्सराओं के नाच देखने में बहुत मशगूल हो गया था, दुर्वासा मुनि आए तो भी उसको इतना ज़्यादा लगा नहीं कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन नाच इतना सुंदर है, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ नाच रही है, उसका ध्यान नहीं था, उसने ऐसा माला दुर्वासा से लिया और अपने हाथी को दे दिया, उसका वाहन हाथी है ना, तो हाथी को दे दिया, अभी हाथी तो हाथी होता है, उसने लिया अपने पैर में डाल के कुचल दिया उसको। ऐसा है देवताओं का काम, कुछ मिल रहा है फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या मिल रहा है, क्योंकि इतना आनंद है वहाँ पर, होश ही रहता नहीं, क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है। तो वो इंद्र ने जो अपराध किया, विष्णु की माला को अपने हाथी के पैर देकर कुचलवाया, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया उसका, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने शाप दिया कि इंद्र बन के बाद भी तुम इतना बुद्धू का काम कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य यश नष्ट हो जाएगा। थोड़े दिन में राक्षसों ने हमला किया और देवताओं को परास्त करके भगा दिया उनको, सब देवता लोग गुफाओं में छुप गए। क्यों? क्योंकि कुछ लड़कियों का डांस देख रहे थे, भगवान का प्रसाद मिला, उसका रिस्पेक्ट नहीं किया उन्होंने। ये देवताओं का जीवन है, कभी गलती करेंगे भरोसा नहीं। भगवान ने उधर गोवर्धन का पूजा किया तो इंद्र को गुस्सा आया, अरे ये कौन लड़का है, मेरी पूजा को बंद करवा रहा है और एक पत्थर की पूजा करने को बोल रहा है, पहाड़ की पूजा कर रहा है, मैं तो इंद्र हूँ, भगवान का देवताओं का राजा हूँ मैं, और मेरी पूजा को बंद करके ये पत्थर की पूजा करने को बोल रहा है। इतना नटखट बालक है और बड़े बड़े जो आदमी हैं वो सुन रहे हैं इसकी बात, वो तो बच्चा है लेकिन बड़े बड़े आदमी उसकी बात सुन के पत्थर की पूजा करने लगे हैं, ऐसा करते क्या, चलो ऐसी वर्षा करूँगा, नाश कर दूंगा सब, हे बादलों आ जाओ। तो प्रलय के बादल थे, सर्वनाश करने वाले, अभी समय नहीं आया उसका, पहले ही बुला लिया उसको। तो वो पूछ रहे हैं महाराज वो तो समय तो नहीं आया अभी तक हमको आने का, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ ना आ जाओ, और जाओ वृंदावन वर्षा करो, नष्ट कर दो सबको, सबको मार दो। 7 दिन 7 रात तक वर्षा किया और भगवान ने क्या किया, नाखून पर ऐसा भगवान ने पर्वत को उठाया और सारा बरसात को फेल कर दिया उन्होंने, इतना बरसात किया, तूफानी वर्षा किया, मूसलधार, इतना इतना बड़ा बूंद। भगवान ने केवल एक नाखून की उंगली से, उंगली के नाखून पे खड़ा करके पर्वत को, सारा इंद्र का पावर को फेल कर दिया उन्होंने। तब जाकर इंद्र को होश आया, अरे बाप रे इतनी बड़ी ताकत का प्रयोग करने के बाद भी ये बालक ने एक उंगली से मिलकर परास्त कर दिया, मतलब भगवान होना चाहिए, ऐसी पावर किसके अंदर नहीं है। तब आँख खुल गई उसकी और माफ़ी मांगने को आया, अरे माफ़ करना माफ़ करना, आप मुझे लगा था कि नटखट बालक है लेकिन ये तो आप भगवान हो गए, तो भगवान है आप, मैं पहचान नहीं पाया, माफ़ करना। तो भगवान ने ध्यान नहीं दिया उनकी ओर, समझ गए कि हमने बड़ा अपराध किया है, भाग के गए अपने गुरु के पास। तो गुरु ने बोला तुम बड़ा अपराध किया है, वो कोई बचा सकता नहीं अभी, तो क्या करना चाहिए, जाओ एक भगवान की भक्त है गाय उसके पास जाओ। भी गाय किधर और इंद्र किधर, तो भी इंद्र को आके गाय के पाँव पड़ने पड़े, क्योंकि गाय भगवान की बहुत प्रिय भक्त है, सुरूभी गाय। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए देवताओं के राजा को एक गाय का चरण पकड़ने पड़ा, घुटना टेक के पाँव पकड़ा, बोला गौ माता कुछ करना हमारे लिए। तो गौ माता उसको भगवान के पास लेके गई, वो बोला भगवान ये बहुत पश्चाताप कर रहा है, अभी दुख कर रहा है बहुत, अपना अपराध करके माफ़ी मांगना चाहता है, इसको माफ़ कर दो। तब भगवान ने इंद्र की ओर पहली बार मुड़ के देखा, बहुत डांटा उसको, बोला दोबारा नहीं करना। लेकिन देवताओं का जीवन इतना भोगमय होता है कि अभी अभी पश्चाताप किया, अभी अभी माफ़ी भी मिल गई, वो बोला दोबारा गलती नहीं करेंगे, ये सब सोच समझ के वापस चला गया वो। कुछ दिन के बाद में भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर स्वर्ग में गए और इंद्र की माता के और पत्नी के जो कुंडल थे एक राक्षस से चुराए थे, नरकासुर नाम के, उसको भगवान ने मारा। और जो इंद्र के वाइफ के कुंडल जो चुराए थे वो लेकर भगवान उसको लौटाने के लिए गए कि भैया तुम्हारे पत्नी के जो चुराए थे ना उसको मैंने मार के ये वापस लाने का आया हूँ इधर मैं। तो उसने भगवान का स्वागत किया, उनको बिठाया, उनकी आरती उतारी, उनका पूजा किया, गौरव किया और विदा भी किया उनको। और विदा करने के बाद में भगवान ने अपनी पत्नी को बोला, अरे सत्यभामा तुमको पारिजात का फूल चाहिए था ना, ये देखो ये अच्छा गार्डन है पारिजात का, ये इंद्र के दरबार के अंदर बहुत अच्छा गार्डन है, इसमें से ले लो आप, आपको जो अच्छा लगता है। उसने एक झाड़ उठाया उसमें से, जैसे ही झाड़ उठाया तो इंद्र के सैनिकों ने हमला किया उनके ऊपर, अरे बिना परमिशन के कैसे लेते हो आप, ये इंद्र का बगीचा है, कोई ऐसा जंगल नहीं है कि आप जो चाहे उठा लो। तो ये खबर इंद्र को पहुंची, अरे भगवान ने अभी अपने पत्नी के लिए मेरे बगीचे से मेरे को पूछे बिना झाड़ उठा लिया। तो इंद्र भूल गया कि भगवान है, ये तुरंत हमला करने को आया और इंद्र की सेना और इंद्र भगवान के साथ युद्ध हुआ स्वर्ग लोक में अपने घर में, और भगवान ने उनको परास्त कर दिया इंद्र को। तो वापस माफी मांगने लगा, अरे अरे माफी करना आप, ये लो लो और दे दो क्या और झाड़ लेके जाओ। कहने का मतलब क्या है, कुछ दिन पहले गिरिराज गोवर्धन को उठाया था तो समझ में आया था कि भगवान है, माफी मांगा था गलती की। उसके कुछ दिन बाद में भगवान स्वयं तुम्हारी वाइफ का चुराया हुआ, राक्षस ने चुराया हुआ कान का कुंडल वापस करने के लिए आए हैं, और पाउंड पड़ा होता, आरती पूजा भी किया था, जाते वक्त झाड़ को उठा लिया, उनका ही झाड़ है वो, उन्होंने दिया हुआ है सब कर्ग लोग और सब कुछ, उनको राजा भी उन्होंने बनाया उनको, फिर भी इतना आसक्ति है कि मेरा झाड़ को उठाया मुझे पूछे बिना, तो उन पर ही हमला करते हो, भूल जाते हैं कि भगवान ने। जैसे गाय कैसे होती, गाय तुम्हारे घर में ऐसा मुँह डालते हैं सब्जी के अंदर, काम डंडा मारते हैं उसको, कुछ देर बाद में दोबारा आती है उधर वापस मुँह डालती है और डंडा वापस मारते हैं उसको आप, मतलब क्या होता है, गाय को याद नहीं रहता है कि डंडा खाया था 5 मिनट पहले, याद नहीं रहता उसको। वैसे ही देवताओं को बार बार वो भूल जाते हैं भगवान कौन है, कि इतना वहाँ पर आनंद का व्यवस्था करके रखा है। कहने का मतलब क्या है, हम लोग देवताओं की निंदा करने को यहाँ बैठे नहीं हैं, हमारा काम नहीं है वो, खाली हम लोग इतना ही बताना चाहते हैं कि आप लोगों का जीवन देवताओं के जीवन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की कृपा आपको इस जीवन में बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती है। ये कार्तिक महीने में आपको जो लाभ मिलेगा वो देवताओं को भी नहीं मिलता है, उनको उनका पूरा 1 करोड़ साल का, 1 10,000 साल का, 10 लाख साल का जो टर्म है ना टर्म, वो पूरा करके ही बाद में निकलना पड़ता है वहाँ से, पहले छुट्टी नहीं मिलती है, एक बार देवता बनने के बाद में उतने साल वहाँ जीना पड़ता है। देखिए मनुष्य के जीवन में अगर 60-70 साल में आपने भगवान का नाम का सहारा लिया तो आप गरीब हो या अमीर हो, पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, फिर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गरीब अमीर देखता नहीं ना, वो सुदामा ब्राह्मण था, उनका क्लासमेट था वो, उनके साथ पढ़ाई करता था उज्जैन के अंदर, इतना गरीब फटीचर आदमी था, उसको मालामाल कर दिया उन्होंने, तो देखा नहीं कि ये गरीब आदमी है, उन्होंने पूछा द्वारपाल लोगों ने कौन है तू, तो बोला भगवान का क्लासमेट हूँ, बोला भगवान का क्लासमेट, वो देखे तो लगता नहीं तुम्हारा, तुम्हारा जो अवतार देख के लगता नहीं कि तो भगवान का साथ में पढ़ाई किया था, आपको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है, हाँ झूठ बोल रहे हो कि तुम भगवान के क्लासमेट हो, तुमको देख के लगता नहीं कि तुम 10 जन्म में भगवान के क्लासमेट बन सकते हो क्या। तो उसने क्या किया, वहाँ से भगवान को पुकारा, और अचानक दरबार से, बहुत दूर दरबार था उनका, वो किधर, उनके महल के बहुत आगे जो गेट था उस महागेट के सामने वो खड़ा है और एंट्री मारने का प्रयास कर रहा है, और वहाँ उसको रोका जा रहा है, और वहाँ से भगवान को उसने पुकारा, तो भगवान अपने दरबार में से सिंहासन छोड़ के भाग के नंगे पैर आए, कहाँ तक आए, गेट तक आए, ऐसा नहीं बोला हे सेनापति मेरा दोस्त वहाँ पर खड़ा है जाओ उसको लेके आओ, ऐसा नहीं बोला, खुद भागे और खुद गेट तक गए, और सब द्वारपाल के सामने उसने वो फटीचर सुदामा को गले लगाया, उसका शरीर धूल से भर गया था क्योंकि वो चल के आ रहा था बहुत दूर से, उस सुदामा को भगवान ने अपना राज वस्त्र पहने हुए थे, भगवान मुकुट पहने हुए थे, सब कुछ राजा के समय थे, इतना अलंकार पहने हुए थे, इतना सारा कीमती वस्त्र पहना हुआ था, उससे सुदामा गरीब फटीचर को गले लगाया भगवान ने, द्वारपाल दंग हो गया, अरे बाप रे इसका मैंने ना बोला अब दंड होगा मुझे क्योंकि इसको मैंने ना बोला, तो गले में गला डालकर उसको भगवान ने अपने हाथ में लेकर ऐसे पूरा दरबार में चले गए, वो घर पे नहीं गए अपने खाना खिलाने के लिए, दरबार में लेके गए, लोग बोल रहे अरे कौन आदमी है, धोती फटा हुआ है, धूल से भरा हुआ है, गरीब दिखता है, खाने में कुछ लगता है, खाते पीते घर का भी नहीं है, और भगवान उसको गले मिलकर ऐसे प्रेम से बात करते 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 जा रहे हैं, और क्या करते हैं अपने सिंहासन पर लेके जाते हैं, लोग देख रहे हैं क्या करने वाले हैं, तो अपने सिंहासन पर उसको बिठा दें, और अपनी पटरानी है ना हरे कृष्णा वो सोने वाले को जगाओ, अपनी पटरानियों को बोलते हैं, उनकी 16,108 रानियां हैं, क्योंकि नंबर 1 की रानी कौन है, रुक्मिणी, उसको बोलते हैं रुक्मिणी सिंहासन पे उतर जाओ, क्योंकि हम और आप वहाँ बैठते हैं, अभी उतर जाओ, अभी इनको बैठना है उस पर, और तुम जाके पैर धोने का सामान लेके आओ। तो रुक्मिणी गई और जग में पानी और परात लेके आई, सब देख रहे क्या चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, तो भगवान ने बोला रुक्मिणी तो पानी डाल मैं पाँव धोता इसके, तो सुदामा के भगवान ने पाँव धोए, रुक्मिणी ने जल दिया और भगवान ने घिस घिस के उसके पाँव धोए और अपने पीताम्बर से उसके पाँव पोछे, फिर क्या करना है, रुक्मिणी लो पंखा लेके आओ, मेरे दोस्त को पंखा करो। तो भगवान नीचे बैठे जमीन पे, सुदामा जो फटीचर आदमी गरीब आदमी है वो सिंहासन पर बैठा है और भगवान की रानी उसको पंखा कर रही है, उसको भोजन खिलाते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, तो ब्राह्मण है ना वो, तो भाग्यवान कौन है, द्वारका के सेनापति सुदामा, भाग्यवान। तो भगवान उसको अपना मानते हैं, उसने अपने आसन में बिठाया, अपने गले लगाया उसको प्रेम से, और फिर पूछा अरे घर से कुछ लाए नहीं क्या तुम, तो वो शर्म आ रहा था उसको, क्योंकि उसने पड़ोसी से उसके पत्नी ने कुछ पोहा उधार मांगा था और वो उधार लाया हुआ पोहा जो था वो ऐसा गांठ मार के रखा था, तीन चार दिन चल चल के आया तो वो सड़ गया था, अभी वो पोहा कैसे देंगे राजा को, अच्छा था तो देने में प्रॉब्लम नहीं था लेकिन थड़ा हुआ पोहा कैसे देंगे, तो बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं लाया, तो क्या है नहीं कुछ, नहीं नहीं कुछ छुपा रहे हो, भाभी ने कुछ दिया होगा, नहीं दे रहा है वो, छुपा रहा है छुपा रहा है, जबरदस्ती उसे छीन के लेता है और खोल के अपने हाथ से खाता है, तीन बार खाता है। तो रुक्मिणी बोलती है बस बस इतना खाने से तो पूरा देवता लोग भी उसका हो गया है, अभी इतना अमीर बन गया हो, और वो संकोच कर रहा है, नहीं नहीं भगवान मत खाओ सड़ा हुआ है खराब है। तो जो भगवान रुक्मिणी के हाथ का, पत्नियों के हाथ का 56 भोग का भोग लेते रोज, वो सड़ा हुआ पोहा खा रहे हैं क्योंकि तो प्रेम है ना उसके ऊपर, तो वो भेदभाव नहीं करते हैं गरीब और अमीर का। मैंने एग्जाम्पल क्यों बताया आपको, आपको लगता है हम लोग तो गरीब है हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन भगवान गरीब भेद का, हम लोग आप लोग भेद करते हैं गरीब और अमीर का, लेकिन भगवान के सामने कोई भेद नहीं होता है, वो किसी का भेद नहीं, सबका प्रेम करते हो, अगर आप उन पर प्रेम करते हैं तो आप, वो आपको प्रेम करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे वो। तो जब सुदामा लौट के गया ना तो अपने घर पे गया वो, लेकिन उसके घर पे जगह पे एक बड़ा महल खड़ा था, तो उसको लगा कि रॉन्ग एड्रेस पे आ गया मैं मेरा एड्रेस अलग था, मैं किसी अलग गली में घुस गया, तो उसको लगा कि गलत जगह पे आ गया मैं, इसलिए वो जाने लगा तो उसकी पत्नी भाग भाग के आई, उसने पहचाना नहीं उस औरत को, बोले कौन है तुम, मैं आपकी पत्नी हूँ, बोले ये इतना कीमती साड़ी, इतना कीमती अलंकार, इतना कीमती सब, हाँ हाँ तुम्हारे दोस्त ने यहाँ पर कृपा कर दी हम पर, सब मेल बांध दिया, दासियों को भेज दिया, भंडार भर दिए, अलंकार भेज दिए, 56 भोग का खाना भेज दिया, ये आपका ही घर है, आप जाओ मत यहाँ से, ये आपका ही घर है। फिर भी सुदामा उस घर में नहीं रहा, वो झोपड़ी में ही रहा, क्योंकि उसको उस पर आसक्ति नहीं थी कि भगवान के पास गया तो महल लेके आया और सबको दिखाया, देखो देखो मेरा दोस्त है ना द्वारका का राजा है, उसने मेरे को गिफ्ट में बंगला दिया है, मुझे एक चाबी दिया बंगले का, ये बंगला मेरा है, ऐसा नहीं बोल रहे। उसकी भगवान की भक्ति कम नहीं हुई इतना होने पर भी, वो वैसा ही रहा जैसे पहले था, क्योंकि उसके जीवन में धन दौलत था, भगवान की भक्ति, वो महल की भूख से वहाँ नहीं गया था कि मुझे आएगा तो मैं, मेरा दोस्त मेरे को महल देगा, गाड़ी की चाबी देगा, एक रथ भेंट देगा 4 घोड़ों वाला, वो कामना करके नहीं गया था उधर। तो ऐसे हमारे जो प्रेमी भगवान है वो इस महीने में बड़े प्रेम से प्राप्त हो जाते हैं बड़े आसानी से। क्या करते हैं इस महीने में वो, ये महीने में उन्होंने अपनी माँ से अपने आप को बांध लिया है, माँ उसको दंड देती है, अरे सब दुनिया को बांध के रखते हो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में, सब दुनिया के लोगों को देवताओं को बांध के रखा है उन्होंने, वहाँ ऊपर उठा था देवता लोग काँपते हैं उनके भय से, चंद्र और सूर्य जो है वो प्रकाश दे रहे हैं उनके भय से, दिन और रात आते हैं, बारिश आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, सब ऋतु अपना अपना काम करते हैं उनके भय से, और वे भगवान जब मक्खन चुराते हैं तो माँ दंड देती है उनको, माँ दंड के उसको बांध देती है और रो रहे हैं वो कि मैया मुझे छुड़ा दो, और बोल रहे हैं अभी ऐसे ही रखना है उधर, हिलना नहीं वहाँ से अभी आप, क्यों, क्योंकि माता का प्रेम है उन पर, उनका भी माता पर प्रेम है, माँ भी उन पर प्रेम करती है, इसलिए वो उनके हाथ से बंधने को भी तैयार है। जो योगियों को तपस्वियों को जन्म जन्मांतर की तपस्या करने से प्राप्त नहीं होते हैं वो एक माता से बांध जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनका प्रेम है, और ये लीला भी इसी महीने में हुआ था, गोवर्धन को भगवान ने इसी महीने में उठाया था, बड़ी गायों को चराने का जो शुरुआत था वो इसी महीने में हुआ था, तुलसी जी का विवाह जो है वो इसी महीने हुआ था, ऐसी बहुत सारी घटनाएं। इस महीने के पहले दिन उन्होंने क्या किया, गोपियों के साथ रास युद्ध किया, वो भी इसी महीने में हुआ। कितनी सारी घटनाएं हैं जो इस महीने में हुई थी। गोवर्धन की पूजा इसी महीने में हुई थी, गोवर्धन को भोग लगाया था इसी महीने में लगाया था, वर्षा भी इसी महीने में हुई थी और धारण भी किया 7 दिन 7 रात, वो भी इसी महीने में किया था। इतना सारा सुंदर सुंदर लीला जो है भगवान का, बाल लीला, वो इस महीने में हुआ था। इसलिए ये महीना बहुत स्पेशल है। इस महीने में इन बाल लीलाओं का श्रवण भी करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसके बारे में कि कितना सुंदर सुंदर लीला जो है भगवान ने अपना भगवान का स्थान भूलकर अपने भक्तों के सामने बालक बनकर लीला किया। एक संत है वो बोलते हैं मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं केवल नंद महाराज की पूजा करता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि सबसे महान तो वही है। क्यों महान है वो? अरे जो परम भगवान है वो इनके आंगन में बालक बनकर खेल रहा है। पर ब्रह्म जो है वो अपना वैकुंठ छोड़कर ये नंद महाराज के आंगन में उनको आनंद देने के लिए बालक बन के रेंग रहा है उधर। तो मतलब नंद महाराज कितने बड़े होंगे, उनके लिए ये पर ब्रह्म जो है वो बालक बनकर यहाँ पर रेंग रहा है, स्तन का दूध पी रहा है, हाथ पकड़कर चलना सीख रहा है। जो दुनिया को चलाते हैं वो माता का हाथ पकड़कर चलना सीख रहे हैं। हाँ, जो भगवद गीता जैसा इतना बड़ा ज्ञान बोलते हैं तो माता के साथ पे बोलना सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, उसके हाथ से भोजन कर रहे हैं, उसके आंगन में खेल रहे हैं उनको खुशी देने के लिए। तो वो कितने महान होंगे, इसलिए वो कहते हैं कि हम उनकी पूजा करेंगे, भगवान से बढ़कर है वो, क्योंकि भगवान उनका आनंद के लिए बच्चा बनकर उनके गोद में खेलते हैं। ये सब जो है इसी महीने में हुआ है, कार्तिक के महीने में। इसलिए कार्तिक के महीने में हम पूजा करते हैं भगवान की, भगवान का मूर्ति की पूजा करते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर यशोदा माई खड़ी है और भगवान को उखल से बांध दिया गया है और भगवान जो उखल में बंधे हुए हैं उसको हम लोग दीपक अर्पण करते हैं। इसी लीला को हम याद करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसके बारे में चिंतन करना चाहते हैं। यही करने से वो जो भजन लिखा हुआ है दामोदर अष्टकम, उसके कवि जो है वो लिखते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन में हमेशा आपकी बाल लीला का दर्शन होता रहे, आप जो उखल में बंधे हुए हैं वो मेरे मन में आपकी छवि बनी रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। और मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना मोक्ष ग्रहों में स्थित दामोदर है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे केवल आपका ये जो स्वरूप है ना, आप बालक बने हुए हैं, घुंघराले बाल है, माता ने बांध के रखा है, डांट रही है आपको, ये आपका जो दृश्य है ये मेरी आँखों के सामने हमेशा बना रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है। ऐसा आदमी कब बोल सकता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जब उसका मन जो है भरा हुआ है आनंद से, तभी ये बोल सकता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। कब बोल सकता है? जब उसका मन जो है भगवान की भक्ति और प्रेम से भरा हुआ है। और ये भक्ति और प्रेम से आपका दिल भर सकता है, आपकी सारी जो तमन्ना है ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो खत्म हो सकती है। आपकी सारी जो मन की इच्छा है भगवान पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अभी 18 तारीख को कार्तिक महीना शुरू हो रहा है और 16-17 तारीख को अगले नवंबर तक ही चलेगा, 30 दिन तक। तो आप लोग अपना तैयारी कीजिए कि मैं इस महीने में 2 माला जब ज़्यादा करूँगा, रोज़ मंदिर जाके दर्शन करूँगा, सुबह शाम दीप अर्पण करूँगा भगवान को, रोज़ भगवान की कथा सुनूँगा, एक आधा घंटा किताब पढ़ूँगा भगवान की, व्रत करूँगा भगवान के लिए, दान पुण्य करूँगा, ब्राह्मणों को भगवत बुलाऊँगा, कीर्तन करूँगा, कितनी सारी वैरायटी आपको करने के लिए, और हर एक का लाभ आपको लाखों गुना मिलेगा। आप कुछ भी करो लेकिन करो, करना चाहिए। अरे दीपावली भी इसी महीने में आती है, नरकासुर का वध भी इसी में हुआ है, हाँ बलि प्रतिपदा भी इसी में है, बलि महाराज जो है पाताल से पृथ्वी का दर्शन करने आते हैं इसी महीने में आते हैं। कितना सारा घटना है इस महीने में। अगर आप द्वितीया के दिन भाई बहन अगर हाथ पकड़कर जमुना जी में स्नान करते हैं तो दोनों भगवान के धाम पहुँच जाते हैं, ऐसा वरदान है। भैया दूज के दिन अगर भाई और बहन हाथ में हाथ पकड़ के जमुना जी में स्नान करते हैं और भाई बहन के हाथ का भोजन करता है तो उसका वरदान क्या है, वो सीधे भगवान के धाम चला जाएगा। कितनी सारी घटनाएं इस महीने में हुई है, लक्ष्मी पूजन, बलि प्रतिपदा, भैया दूज, तुलसी विवाह, गिनते जाओ, बोलते जाओ और गिनते जाओ, सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो इस महीने में होगी। इसलिए भक्त लोग व्रत करते हैं, अपने आप को इंद्रियों के भोग से दूर रखते हैं। गृहस्थ लोग सेक्स नहीं करते हैं इस महीने में, ये व्रत रखते हैं, भगवान का नाम का व्रत लेते हैं, बाकी सब दूर रखते हैं, मौज मजा और भगवान के नाम में भजन में मस्त रहते हैं, क्योंकि थोड़े समय में बहुत ज़्यादा लाभ उनको मिल सकता है इस महीने में। आप लोग को विनती करता हूँ, आप भी इस महीने के अंदर बिना कंजूसी किए हुए भगवान का भजन कीजिए, नहीं तो फिर मनुष्य बन के लाभ क्या है? वो देवता लोग देवता बन के आपके लिए देख रहे हैं कि आप कितने भाग्यवान जी हो, और आप सोच रहे हैं कि क्या जीवन है यहाँ पर, उधर देखो कितना मजा है, वो यहाँ पर आना चाहते हैं, आप वहाँ जाना चाहते हैं, समझो इस बात को और अपने जीवन को धन्य करो। अगर मनुष्य बनने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कौन से जन्म में समझ में आएगा, क्योंकि और कोई इससे बड़ा जन्म है ही नहीं जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा। जो हमारे पास नहीं है वही हमको अच्छा लगता है, और जो हमारे पास है उसका हमको ज्ञान नहीं है। होता है ना वो कस्तूरी मृग जो होता है ना, वो जंगल भर घूमते रहता है, खुशबू कहाँ से आ रही है ढूंढते हुए, जंगल भर में घूमता है, सब जगह खुशबू आती है और ढूंढ रहे कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है उसको पता नहीं, फिर मालूम पड़ता है कि उसके नाभि से आ रही है, वहाँ पर कस्तूरी है ना, कस्तूरी उसमें से सुगंध आ रही है। मतलब यहाँ पर भगवान है और यहीं पर आनंद है और ये जीवन परिपूर्ण जीवन है, फिर भी वो छोड़ के हम सब कुछ जगह सब जगह देखते हैं, एक उसको छोड़ के सब जगह ढूंढ रहे हैं किधर खुशी है, किधर आनंद है, किधर अपने को जीवन में समाधान मिलेगा। लेकिन जब समझता है कि किसी में नहीं है, केवल इसी में है, अपने जीवन में ही धन्यवाद है, आनंद है, समाधान है, तो फिर वो खुश बन जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे भाग्यवान बनकर भी दुर्भाग्य मत बनो, आप सबसे भाग्यवान हो क्योंकि आपके पास मनुष्य का जीवन है, इसी जीवन में आपको भगवान का नाम लेके उनकी प्राप्ति करनी है, और भगवान ने जिस काम के लिए आपको ये भाग्यवान शरीर दिया है उसका जो उद्देश्य है, पर्पस है, उसको आपको पूरा करना है, तभी आपको दोबारा दुख का मुँह देखना नहीं पड़ेगा, कष्ट का मुँह देखना नहीं पड़ेगा, जन्म मृत्यु का मुँह देखना नहीं पड़ेगा, भगवान के पास में आप चिरंतन जीवन जिएंगे, आनंद का जीवन, जो आपका स्वभाव है, जो आपका हक है, जो आपका मूल स्वभाव है कि आपको आनंद चाहिए, वो आनंद आपको मिलेगा जिसकी खोज में आप लोग हो, वो केवल भगवान के चरणों में है और कहीं नहीं। आप कितना प्रयास करो, पत्थर पर सर पटको, लेकिन आपको नहीं मिलेगा जब तक आप भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण नहीं करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कार्तिक की बधाई, और पहले ही बोल दिया आपको 8 दिन 10 दिन, आप तैयारी करो, कागज़ में लिखो क्या करना है आपको, और अच्छी तरह से बड़े प्रेम से भगवान के लिए ये महीने का व्रत करो। भगवान आप पर बड़ी कृपा करेंगे, राधा रानी जो ऊर्जा देवी है, हाँ तो उसका नाम ही ऊर्जा देवी है, वो इस महीने में आपको बड़ी कृपा करके भगवान की भक्ति का दान देगी। हरे कृष्णा।